से गहरा है प्यार तुम्हारा।
रात के अंधियारे को दूर करने के लिए सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि तुम जाओ तो मैं आऊं, है ना? सूर्य उदय होता है तो अंधियारा चला जाता है। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य हम सबके सामने है। सूरज भाई, जब आप भी हम सबके सम्मुख रहते हैं, कईयों को आपने बुद्धियां कराई हैं, योग कराए हैं, तो आपके क्लासेज से कईयों की नेगेटिव भाव, कईयों की समस्याएं सतह समाप्त हो जाती हैं। हर समस्याओं का समाधान बहुत सहज और सरल विधि से आप बतलाते हैं, इसीलिए ही आपका नाम सूर्य रखा। अपने आप के वह अंधकार को दूर करते, जैसे सूरज भाई जिन्होंने 1964 में इसी शरीर ज्ञान को प्राप्त किया, 1968 में आपने यह जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की, तभी से ही आप मधुबन में भंडारे की सेवा को करते रहे। मुझे भी बचपन की वो बात याद आती कि जब बाबा मुरली में साकार में थे तो कहते थे कि एक कोई ऐसा योगी बच्चा कि योगियों के हाथ का भोजन, जिसका वर्णन बाबा खूब मुरलियों में करते हैं और आप सभी ने भी पढ़ा होगा। और उन्हीं दिनों मैं समझती हूँ कि सूरज भाई आए थे और तब से लेकर के इस किचन डिपार्टमेंट को आप बड़ी कुशल लीजी से संभाल के, किचन डिपार्टमेंट को संभालने के लिए कई बातों का त्याग करना पड़ता है। पर हमने देखा कि उस समय हमारे ऐसे भाइयों के जीवन में त्याग या कोई बात नहीं सुना, उनके चेहरे पर आता कभी नहीं लगा, हमेशा ऐसा ही हमने देखा कि ये भी बाबा की सेवा है और बड़ी प्रसन्नता से सहर्ष बाबा की सेवा को स्वीकार किया। जैसे प्रसन्न चित रहने वाले जो प्रशंसा के पात्र हैं, ऐसे ही प्रशंसा नहीं लेकिन जो प्रशंसा के पात्र हैं, हम सभी जो उपस्थित हैं अपने कई स्थानों पर, भारत में भी तो विदेशों में जाकर के बच्चियां कराई हैं और आज हम सबका भी क्लास लेंगे। हम बेचारा दिन एक शब्द बहुत ज्यादा बोलते, दो बोलते लेकिन एक का तो निवारण हो चुका, बाकी एक और है। कौन सा? एक तो मैं और दूसरा क्या होता है मेरा। हम सारे दिन में कितनी बार बोलते हैं, बिगर गिनती है, अनलिमिटेड है, है ना? उस मेरे को तेरे में कैसे परिवर्तन करें, उसकी सहज विधि या कहें सरल उपाय, वो हम सभी को सूरज भाई बतलाएंगे। सूरज भाई का जिगर ग्रुप की ओर से हार्दिक स्वागत है और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप हम सबके बीच उपस्थित हुए कि सब कुछ परमात्मा को कैसे अर्पित कर दें। कैसे ये मेरा पन हमारा समाप्त हो जाए उसकी हमें युक्तियाँ सिखलाएंगे। दाता सूरज भाई।
ओम शांति। मैं पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी पसंद है ना? लेकिन उससे पहले एक लाइन बाबा की, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। इस आकार मुरली में आई हुई राजयोग की परिभाषा है, राजयोग अर्थात मेरा, बोलो है तो सब कुछ मेरा ही, फिर कुछ नहीं करना, ये श्रेष्ठ विवेक की बात है। कहानी है, बहुत अच्छी है। पार्वती को बहुत इच्छा हुई, महादेव को कहा, बहनों की ज्यादा इच्छा होती है जरा, तो कहा सबको तो तुमने बहुत धनमाल दिया है, हम झोपड़ी में ही रहते हैं, हमारे लिए भी एक सोने का महल बनवाओ। शंकर जी ने बहुत समझाया कि हम तपस्वी हैं और तपस्वियों को झोपड़ियों में ही रहना होता है, हमारे भाग्य में सोने के महल नहीं है। उसने बहुत जिद की तो कहा चलो बनवा देते हैं। तो उस समय सबसे बड़ा वास्तु शास्त्री था रावण, पंडित था वो। रावण को तो बदनाम किया हुआ है बेचारे को, ऐसा बुरा तो नहीं था वो। देखो रावण सीता को उठाकर ले गया लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया जब तक उसकी इच्छा नहीं, तो कितनी बड़ी प्योरिटी रही होगी। आज भी लोग ऐसा नहीं करते। तो शंकर जी ने रावण को बुलाया और कहा कि महल बनाना है सोने का, तो जो देवताओं का खजाने का मालिक था ना कुबेर, उसको बता दिया कि भाई ये रावण लेने आएगा सोना हीरे, इसको देते जाना, हमारा महल बनना है। तो शिव के नाम पर रावण को कुबेर धन संपत्ति देता गया और महल बन गया। महल बना नाम पर किसके? शिव के। रहस्य है इनमें, इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ। शिव के नाम पर कुबेर धन देता गया और रावण ने एक सोने का महल बना दिया। अब सोने के महल के बाद उसका गृह प्रवेश करना था, तो पंडित भी रावण ही सबसे बड़ा था, कहा तुम ही करो भाई। तो रावण के मन में लोभ आ गया, उसने गृह प्रवेश का सब पूजन पूजन किया, उसके मन में लोभ आ गया कि शिव पार्वती भी यहीं रहेंगी, तो मैं दक्षिणा में ये महल ही मांग लेता हूँ, मैं भी उनके साथ रहूंगा। वो शिव का भगत था बहुत बड़ा, मांग लिया कि ये महल ही मुझे दे दो। भोलेनाथ जी ने कहा था अस्तु ये तुम्हारा। रावण खुश हो गया और कहा तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, अब तक तो भक्ति करता था, अब आप भी यहाँ रहेंगे और मैं भी रहूंगा। तो शिव ने क्या उत्तर दिया? शिव दिखाते है ना वहां से शंकर, एक जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है, जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं हूँ। तो बात तो कहानियों की है पर सत्यता हमारे लिए है। जिनके मन में मेरा मेरा बहुत है उनके दिल में बाबा का वास नहीं हो सकता, अर्थात वो योगयुक्त नहीं हो सकते। ठीक बात है ना? तो शिव वहाँ से चले गए अपने कैलाश पर्वत पर और पार्वती को कहा, देखा पार्वती मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि हमें झोपड़ियों में ही रहना है। देखो ये रहस्य है कि हमारे पास ऐसा आता है बाबा के नाम पर और यदि उसको मेरा कर दें तो वहाँ बाबा का वास नहीं रहेगा। जिन्होंने कर दिया सब कुछ तेरा, सुख संवाद है, सब कुछ तेरा मान लिया, मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है, तो उस पर किसका अधिकार हो गया? बाबा का अधिकार हो गया, फिर वो हमारा नहीं रहा। अब उस सब कुछ में क्या क्या है? सब कुछ तेरा। अब चिंतन करना है सबको, आठ बातें हम करेंगे जो तेरी करनी है। पहला, मोटी बात और सूक्ष्म बात भी है जो हम सबसे पहले कहते हैं, धन मन धन सब तेरा। मन तो बहुत सूक्ष्म है, इसमें चौथी भी जोड़ दें, बुद्धि भी। धन मन धन और बुद्धि तेरी, चार चीजें हो गई। और आगे बढ़े, पांचवी खोलना है आपको। वो मन में आ गए, मन हो गया वो। सबकी रोज की बात है, ये के संबंध सब तेरे। दे आया, फिर दे के सब। और छठा, हैं? हाँ, इसके पहले मेरा हर कर्म तुम्हारा। जब हम उसके हो गए तो कर्म किसका हुआ? वो भी बाबा का। ऐसा नहीं हम तुम्हारे, लेकिन कर्म करेंगे अपने लिए, कर्म भी तुम्हारे। छह हो गए, सातवा कर्मों का परिणाम। ये बहुत सूक्ष्म है, इस पे हम चर्चा करेंगे। कर्मों का परिणाम भी तुमको अर्पित। और आठवा, मन के सारे बोझ, समस्याएं, दुविधाएं सब तुमको अर्पित। इसलिए हम चर्चा करेंगे। ये है श्रेष्ठ समर्पणता मेरेपन की। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, मेरा जीवन ही तेरे लिए। सोच ले, एक एक बात पे सोचना है, तभी अपने से बात करो। कह सकते हैं, मेरा जीवन ही तेरे लिए। देखो, जो बहने भाई समर्पित हो चुके हैं वो तो कहेंगे ना, मेरा जीवन तुम्हारे लिए, हर सेकंड तुम्हारे लिए, समय भी तुमको अर्पित। तुझे योग्यताएं मिली हैं, समय में श्वास भी आ गया, समय और श्वास दोनों तुमको अर्पित। जो योग्यताएं मिली हैं वो भी तुमको अर्पित। योग्यताएं किसने दी? सच बात है या नहीं? किसी को रहता है मैंने एमए किया, पीएचडी की, ये तो मेरी मेहनत है ना, बाबा ने थोड़ा ही दी। क्या कहेंगे भाई लोग? मैंने बिजनेस किया, बहुत कुछ कमाया, बिजनेस करने की बुद्धि मेरे पास थी, ये बाबा ने दी क्या? बोलो पीछे वाले, दी? बोलो बाबा की है या मेरी? बाबा की। ये सत्य है, और इस सत्य को जानना भी जरूरी है। संगम युग पर हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु देन है, प्रभु देन है, उस पर ध्यान देना है। प्रभु देन है, उसको प्रभु के कार्य में यूज कर रहे हैं। ये सूक्ष्म गति हो जाती है, इसे अभिमान कभी नहीं आता। तुम्हारी देन है, तुमको अर्पित। तो मेरा जीवन तुम्हारे लिए, तन तुमको अर्पित। तो हम क्या बच गए? नहीं, तन दे दिया बाबा को, क्या बच गए पीछे? आत्मा। योग बहुत अच्छा लगेगा, जब भी योग में बैठो ये संकल्प करना, बाबा मेरा सब कुछ तेरा, ये तन भी तुमको अर्पित। योग लगेगा फर्स्ट क्लास, हम आत्मा हो गए ना। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, बेफिक्र बादशाह बनो, सुना आपकी क्लास हो गई है इस पे, पर मैं भी कुछ कहूंगा आपको। और उसमें मुख्य दो ही बातें थी, मेरे को तेरे में बदल दो। दूसरी बात किसको याद है? बेफिक्र बनने के लिए फिकर बाप को देकर फकुर ले लो। फकुर माना, फकुर माना नशा, बेफिक्र नहीं, फकुर माना नशा। तो जब मेरा होता है तो चिंताएं बहुत होती हैं, उसको तेरा करते ही चिंताएं मिटने लगती हैं। बहुत माताएं मेरे पास आती हैं समस्याएं लेकर, मैं पहले ही समझ जाता हूँ इनकी अपनी समस्या तो नहीं होगी। किसकी होगी? बच्चों की। सर जितनी माताएं आएंगी 90% समस्याएं बच्चों की हैं, बहुत भारी रहती हैं। एक की कहानी मैं सुनाता आता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बहुत बूढ़ी माता आई मेरे पास, बहुत बूढ़ी, कहा मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या हो गया, कौन सी चिंता है, तुम रिटायर हो गई, 85 साल की है, मस्त रहना चाहिए अब तुम्हें। कहा नहीं, मस्त कैसे रहूं, मेरी लड़की की लड़की की लड़की, चौथा चौथी पीढ़ी, वो 10 साल की है, वो पढ़ती नहीं है, मुझे बहुत चिंता होती है इसका क्या होगा। ऐसी माताओं की अनेक चिंताएं हैं जो उन्हें करनी नहीं चाहिए, पर चिंता करने की आदत पड़ गई है। किसके कारण? मेरा। इस मेरे को जब तक तेरे में नहीं बदला, तब तक निश्चिंत जीवन, बेफिक्र जीवन हो नहीं सकता। फकुर, दो ही बात याद रखना, कौन मुझे साथ दे रहा है। जिसको ये नशा रहेगा वो बेफिक्र बन जाएंगे, कौन मुझे साथ दे रहा है। पर इसको बहुत पक्का करना पड़ेगा ताकि परिस्थितियों में ये याद रहे। आज था बाबा का बहुत सुंदर बात, जब तुम मनुष्यों से मदद लेते हो तो बाप मदद क्यों करे। सीधा कह दिया, मैं क्यों करूं, तुम तो मनुष्यों के पास जा रहे हो। कभी कहा तुम तो 2 भुजा वालों के पास जाते हो, 1000 भुजा वाले के पास आते ही नहीं हो। आज सीधा ही बोल दिया तो मैं क्यों मदद करूं। जा उधर रहे हैं, मेरी ओर देख ही नहीं रहे तो मैं मदद क्यों करूं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें इन्हीं शब्दों में, कौन मुझे मदद कर रहा है, कौन कौन। अच्छे अच्छे चिंतन करेंगे। कोई भी चीज हमारे जीवन में तब धारण हो जाती है जब हम उसको अपने चिंतन में ले आते हैं। क्या चिंतन करेंगे? मुझे वो मदद कर रहा है, मुझे वो साथ दे रहा है, जिसका साथ मिलने के बाद और किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। सारा संसार एक तरफ हो जाए और जिसकी तरफ बाबा हो, विजय उसी की होगी। मुझे वो साथ दे रहा है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, मुझे वो साथ दे रहा है जो भाग्य विधाता है। इसको चिंतन में लाना है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात, मेरे सिर पर किसका हाथ है। बस ये दो बातें चिंतन में लाएंगे तो बहुत सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मेरे को तेरे में, हम माताओं का उदाहरण दे रहे थे, मेरे बच्चे हैं, किसी ने बहुत अच्छा कहा, आजकल छोटे बच्चों की चिंताएं बहुत रहती हैं, बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं जो बहुत हाई फाई हैं, समझते हैं ना सब तेज तराक। तो कहा इसने, मेरा 9 साल का बच्चा मुझे बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। कहा मैं उसे प्यार करूँ ना जरा सा तो मेरे मुंह पे मार देता है नाखून। कल की बात है, ये फोन आया किसी का, कहा बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। तो हमने उससे पूछा, 9 साल से तो वो आपके पास है, 10 साल पहले कहाँ था वो? कहाँ था है? माताएं बताओ, 9 साल पहले, 9 साल से तो ये इसका बच्चा है, 10 साल पहले कहाँ था वो? किसी और का बच्चा होगा ना, हो गया या नहीं? अगर हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाए और इस बात को हम समर्पित कर दें बाबा को, ये तुम्हारा बच्चा है संभालो, तो अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बात आप सबको करनी है। और उस केस में हमने बताया, और ये बहुत जगह अच्छा हुआ है, जरूर वो आत्मा इसके हिसाब लेने आई है ना, जो माँ के प्यार को भी स्वीकार नहीं कर रही है, तो जरूर इस माँ ने उस आत्मा को पिछले जन्म में कष्ट दिए हैं। आजकल कष्ट बहुत दे रहे हैं लोग एक दूसरे को, तो वो बदला लेने आई है, उससे मन ही मन क्षमा याचना करें रोज सवेरे, उसका चित्त शांत होगा। और अगर ये कर लेगी तो इसका चित्त लड़के का शांत हो जाएगा। तो ये मेरे बच्चे नहीं, ये आत्माएं हैं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, अपने परिवार में बाबा को शामिल करो, बड़ा बना लो अपने परिवार का बाबा को। तो चिंताएं किसकी होती हैं घर में? बड़ों की। और अगर हम उसे अपना बड़ा बना लेंगे, सारी चिंताएं उसको जाने लगेंगी। और हमें विश्वास होना चाहिए, बाबा हमारी बहुत केयर करता है, कम नहीं। आप सब मातृका यहाँ बैठे हैं, आप अपने मन से जानो, अपनी मन की मेंटेलिटी को, भावनाओं को देखो, आपका आपके बच्चों से कितना प्यार है, कहने की बात तो नहीं ना। आप उनके लिए कितनी शुभ भावनाएं रखते हैं, उन्हें कितना अच्छा बना देना चाहते हैं, उनके भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं, लौकिक माँ बाप और अलौकिक माँ पिता। प्यार का सागर है, जिसके पास प्यार की कमी नहीं है। किसी ने कहा मुझे भगवान से बहुत डर लगता है, बाहर का व्यक्ति नॉन बीके, हमने उसको समझाया, जिस भगवान को तुम प्यार का सागर कहते हो, जो क्षमावान है, जो रहम दिल है, वो भला किसी को डराएगा? उसको तो डराना आता ही नहीं। सोच ले मैंने क्या कहा। चलो को क्या करेंगे, अपने परिवार में जोड़ लें। बाबा डराना जानता ही नहीं किसी को, देखा कभी बाबा को डराते? कितने प्यार से बात करता है, क्योंकि जो प्यार का सागर है उसके पास तो प्यार ही प्यार है। और क्योंकि वो नॉलेजफुल है, तो वो अपने सभी बच्चों को देखकर उनकी गलतियां देखता ही नहीं। उसे तो पता है हर आत्मा वही पुरुषार्थ कर रही है जो कल पहले किया था, ठीक है। तो बाबा को अपने परिवार में शामिल करें। बोलो कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ जो जो करेंगे। दोनों हाथ उठा दो, नींद भी भाग जाए। नींद किस किस को आ रही है? ठीक है अब नहीं आएगी। बाबा को अपने परिवार में शामिल कर लो और सारे बोझ बाबा पे छोड़ दो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जहाँ बाबा के बच्चे फेल होते हैं वो आपको बता देता हूँ, बाबा पे कोई भी समस्या की जिम्मेदारी छोड़ी तो सब क्या चाहते हैं, अभी अभी ठीक कर दे बाबा। यहाँ थोड़ा सा वाइज मैन बनना है, अभी अभी नहीं होगा, इंतजार करें, विश्वास रखते हुए इंतजार करें कि वो ठीक समय पर समय से पहले सब कुछ ठीक कर देगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव विनाश काल में बाबा की मदद से होने हैं। विनाश काल तेजी से हमारे पास चला रहा है। जिसने बाबा में बहुत विश्वास रखा होगा बहुत अच्छे अनुभव में, बाबा के विश्वास की भी वही कहानी है उसी महल की, कि जब महल बन रहा था तो पार्वती को मैसेज मिला कि शनि आ रहा है। शनि है ना, कहते किसी पे शनि की नजर पड़ जाए तो सब बिगड़ जाता है। तो पार्वती ने सोचा मेरे महल पे शनि की नजर पड़ जाएगी, मेरे पे पड़ जाएगी, सब बिगड़ जाएगा। तो महादेव जी को कहा तुम शनि को रोको, जाओ आने न दो उसको, ऐसा कुछ करो। महादेव जी ने कहा ठीक है जाता हूँ रोक लेता हूँ। आगे चले गए, पहाड़ी पे बैठे, शनि को रोक लिया, बातों में लगा लिया, शनि प्रसन्न हो गए। कहा मुझे अपना डमरू तो बजा के दिखाओ, बहुत अच्छा बजाते हो आप तो। शंकर जी ने अपना डमरू बजा दिया, उधर पार्वती जो पहले ही डरी बैठी थी ना कि शनि आ न जाए, उसने क्या सोचा, देखो डर है वो मनुष्य गलती कराता है, उसने क्या सोचा कि लगता है महादेव शनि को रोक नहीं पाए, इसलिए मुझे सावधान करने के लिए डमरू बजा रहे हैं कि शनि तो आ रहा है, तो शनि की दृष्टि मेरे महल पे पड़े इससे अच्छा है मैं ही जाती हूँ। तो पार्वती चली गई शनि के पास, महादेव के पास। महादेव ने उसे देखा और कहा तुम क्यों आ गई, तुमसे बचाने के लिए तुम्हें ये सब कर रहा था। कहा मैंने सोचा तुम शनि को रोक नहीं पाए इसलिए डमरू बजा रहे हो। अब काम की बात यहाँ है, तो महादेव ने कहा तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, ये गलती करती हैं सब पार्वतियाँ। कौन है पार्वतियाँ, हम सब ये गलती करती हैं, विश्वास नहीं रखते, धीरज नहीं रखते और परेशान होके वही गलती फिर कर देते हैं जिससे बाबा बचाना चाहता है। तो बाबा को पहचानते चलें, उसकी शक्तियों को जानते चलें, ये विश्वास हो जाए कि जिसको हमने काम सौंप दिया है वो कौन है, उसकी शक्तियों के बाहर कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसकी शक्तियों को काट सके, पार कर सके, ऐसा विश्वास हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तो अपने मन के बोझ अपनी समस्याएं बाबा को अर्पित करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अभी कर दो। कोई भी बात आपके मन को भारी कर रही हो, चिंता किसी बात की आजकल रहती है परिवारों में, कुछ ना कुछ बात काम धंधों में, उसे अर्पण करने के अनुभव बढ़ाओ। कि अर्पण करने से क्या क्या होता है, देखो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको सुलझाने के लिए हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, उलझते जाते हैं। तो अपने से बात करें सभी कि हमने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करके बहुत देख लिया, अब जरा अर्पण करके देखें क्या होता है। एक भाई का बहुत अच्छा अनुभव, चिट्ठी अच्छी बात है। मैं दिल्ली में था, उसकी सरकारी नौकरी थी, अच्छा ऑफिसर था, वो नौकरी छूट गई। बहुत मेहनत की, 2-3 मास इस MLA से मिल रहे, उस MP से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहीं नौकरी बहाल हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे याद है एक दिन मेरे से उसकी अच्छी दोस्ती थी, मैं छोटा था वो बड़ा था, तो कहा बाबा को भोग लगाते हैं। तो उसने बाबा को भोग लगवाया। सब संदेशी बहनें ध्यान में जाती थी, सब सेंटरों में 1-2 संदेशी होती थी और बाबा के मैसेज आते थे। संदेशी को बाबा ने क्या दिखाया, एक उलझा हुआ धागा दिया, कच्चे धागे होते ना सूत से, सूत जी ने कहते हैं, तो कहा लो बच्ची इसे सुलझा दो, ठीक करो इसे, ये उलझ गया है। तो उसने वो धागा लिया और जिधर से वो खींचे गांठ बन जाए नहीं, फिर दूसरी तरफ से कोशिश करे फिर गांठ बन जाए। तो परेशान हो गई, कहा बाबा मेरे से तो नहीं सुलझता, तो कहा लाओ मुझे दो। बाबा ने लिया और एक तरफ से धागे को ऐसे करता गया और सब सीधा हो गया, सुलझ गया। बाबा ने संदेश दिया, बच्चे अपनी समस्या को बाप को नहीं सौंपते। बस वो भाई निश्चिंत हुआ, सौंप दी बाबा को और 8 दिन में उसकी नौकरी बहाल हो गई। इसे बहुत परेशान रहा 3 मास, वो सहज भाव से हो गई। तो समस्याओं के बारे में सभी ये करेंगे कि मन की सब बातें बाबा को सौंप दो और देखो बाबा क्या करता है। भाई गीत निकाल के रखना, जीवन की नैया कर दे, बाद में हो जाएंगे। मन को अर्पित करना ये थोड़ी गुई ये बात है, मन मेरा है। बहुत सूक्ष्म बातें बाबा ने इसके बारे में कही हैं। मैं आपको 1-2 बात याद दिलाता हूँ, आप में से जो भी उस बात को कैच कर ले, कैच करने की बात है, ज्ञान की बात नहीं। मन बहुत भटकता है ना, न जाने कहाँ कहाँ भागता है। बाबा ने कहा मन को कंट्रोल करने की पावर तुम्हारे पास ही है, उसे यूज करो। मन मेरा है, उसकी कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है मन का। बहुत सूक्ष्म बात है। मन में हमारे ऐसे संकल्प उठे, थोड़ी सी बात याद रखी मन की समर्पणता की, जो बाबा को प्रिय हो। लिख लो जो लिख रहे हैं, वही मन बाबा को अर्पित माना जाएगा जिसमें वो संकल्प उठे जो बाबा को प्रिय हैं। अगर मन में व्यर्थ चलता है तो बाबा उस मन को स्वीकार करेगा नहीं। और व्यर्थ संकल्प तूफान है ना मन में इनका। एक और सुंदर बात लिख लो, काम आएगी आपको, व्यर्थ से मुक्त हो जाएं तो श्रेष्ठ संकल्प चमत्कार करेंगे। जो व्यर्थ से मुक्त हो गए उनके संकल्पों से ही सब काम होने लगेगा और कमाल के अनुभव होने लगेंगे। धन अर्पित, आप सब कहेंगे अपना धन सारे कैसे अर्पित कर दें, हमारा परिवार है, बच्चे हैं। बोलो क्या उत्तर इसका, ये तो बाबा भी जानता है कि इनको बच्चे हैं, परिवार है, धन की बहुत जरूरत इन्हें रहती है। और फिर बाबा कहता है सब कुछ मेरा कर दो, क्या राज है इसमें, सब कुछ तेरा है, अब हम ट्रस्टी हैं केवल, तो हमारा पैसा गलत कार्यों में यूज नहीं हो सकता। लोग से बचेंगे सभी, माताएं भी और भाई भी। एक बहन कहीं रहती थी, कपड़े तो उसने ब्रह्मा कुमारियों के पहने थे लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी थी नहीं, अभी भी दिखावा करती है, गलत काम कर लिए, माताओं से सोना लिया तो तुम्हारा डबल करके दूंगी 6 मास में। माताओं ने सोचा इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है, बहन है डबल करके देगी और सबका पैसा सोना ले लिया, कोई लिखा पढ़ा तो नहीं, और कह दिया मैंने कब लिया, चालाक है ना वो, थी है भी अभी बहुत चालाक, उसे पैसा ही पैसा चाहिए और कुछ उससे उसका लेना देना नहीं किसी बात से। लोभ में माताएं मारी गई, अपने पतियों को भी नहीं बताया था, आखिर बताया कुछ के पति समझदार पिता भाई चलो तुमने दे दिया अब क्या करेंगे। भाइयों की कहानी सुनो, मेरे पास ऐसे फोन करते हैं ना लोग, जयपुर में एक जगह का एक तांत्रिक व्यक्ति पहुंचा दिल्ली में एक भाई के पास और कहा फलानी जगह धन गड़ा हुआ है बहुत, तुम उसे निकाल सकते हो लेकिन उसके ऊपर सांप बैठा है, उसको राजी करने के लिए 1.25 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। दे दिया बेचारे ने 1.25 लाख, कर लो भाई। दोबारा फिर आया कुछ दिन के बाद, कभी राजी नहीं हुआ, 1.25 लाख का और करना पड़ेगा। और उसने इस भाई से ठगते ठगते 50 लाख रुपए ले लिए। लिखा पड़ी कुछ नहीं, दे दिया मैंने कहाँ लिए, कब दिए तुमने मुझे पैसे। बेचारे ने मुझे फोन किया क्या करूं भाई, कहा बहुत कहने सुनने पे 10 लाख लौटा दिए हैं। तो ये लोग धन में गड़ा हुआ, लोग धन में वो धरती में गड़ा हुआ धन। मैंने कहा तुमने ये नहीं पूछा कि भाई तुम ही निकाल लो जब तुम्हें पता है, ये लालच मनुष्य को समस्याओं में फंसा देता है। धरती में तो बहुत धन है, जो सतयुग का माल है वो सारा धरती में ही है, लेकिन वो कलयुग में हमारे काम नहीं आएगा। वो तभी काम आएगा जब हम सतयुग में होंगे, वो सारा आप ही आ जाएगा हमारे पास, हमें धरती खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूकंप होंगे नीचे का माल सब ऊपर, जो ऊपर सांप बैठे वो भी मर जाएंगे आप ही, हमें कुछ करना नहीं। इसलिए सभी लोभ लालच से बच के रहेंगे। बुद्धि का समर्पण, मेरी बुद्धि मैं बहुत होशियार हूँ ये नहीं, ये बुद्धि बाबा ने दी है। छोटी सी बात और सुनाना चाहता हूँ सबको, सबके फायदे के लिए, कोई ऐसी गलती ना करे। एक जगह की घटना विदेश की, तो वहाँ अपने सेंटर को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तो रजिस्टर्ड के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और 8-10 मेंबर। बहनों ने कुछ अच्छे जो भाई थे, एक को प्रेसिडेंट बना दिया, एक को सेक्रेटरी और 7-8 मेंबर बना दिए। कमेटी अच्छी चली, सेंटर रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन इन दो भाइयों को जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बने, इनको धीरे धीरे अहम बढ़ता गया और क्या सोचते गए, हमारी आज्ञा से ही सेंटर चलना चाहिए, सब काम हमसे पूछ के करो, पैसे का हिसाब किताब हमें दो, कहीं भी जाना है हमसे पूछो। सेंटर में डिस्टरबेंस होने लगा, वकीलों से राय की, वकीलों ने कहा 10 साल हो गए इस कमेटी को भंग किया जा सकता है, कानून ऐसे ही है, दूसरी बना दो। उन्होंने उस कमेटी को भंग किया, दूसरी बना दी। अब ये और परेशान हो गए तो सेंटर की सेवाओं को डिस्टर्ब करने लगे, फायदा होगा ही नहीं, कुछ होगा संपूर्ण नुकसान, अपना सब कुछ गंवा के फिर होश में आएंगे। ये बुद्धि का अहम है, भाई बहनों में ये आ जाता है, ये भूलना नहीं है कि ये कार्य श्री बाबा का है, सारा कंट्रोल ऊपर से है नीचे से नहीं। हम करे कि मैं ये करता हूँ, मेरे से पूछ के करें, ये सबसे बड़ा बुद्धि का अभिमान है। महाभारत की आपने कहानियाँ सुनी हो, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ महाभारत में दिखाई गई हैं। अर्जुन को अभिमान होता है, भीम को अभिमान होता है कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीता, इतने महारथियों को मार गिराया। तो श्री कृष्ण उसे ले जाता है किसी सन्यासी के पास, कहा कि भाई तुम बताओ युद्ध में सबसे ज्यादा वीरता किसने दिखाई थी। उसने कहा भाई मैं तो अपने आश्रम में रहता हूँ, एक गिद्ध चील होती है ना ईगल, वो ऊपर घूम रहा था जब युद्ध हो रहा था, वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कहानियां हैं। उसको बुलाया और उसने क्या कहा कि युद्ध तो हो रहा था पर मैंने तो क्या देखा कि चारों ओर केवल सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, किसी के बाण चल ही नहीं रहे थे। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये तो ईश्वरीय शक्ति का चमत्कार था। ये बात एंड की भी है, एकदम बिल्कुल एंड। युधिष्ठिर को महसूस होने लगा मेरे पास धर्म की शक्ति नहीं रही। भीम को महसूस होने लगा मेरी भुजाओं में बल नहीं है। अर्जुन बहुत सारा माल लेकर आ रहा था, दिखाया आबू के पास, भीलों ने उसे डंडों से पीटा, लूट लिया सब। अभी इन्हें महसूस हुआ कि क्या हो रहा है हम सबसे, हम सबके साथ क्या हो रहा है, तो दूत को भेजा श्रीकरण के पास कि जाओ बुला के लाओ, जल्दी गड़बड़ हो रही है। दूत बहुत जल्दी तेजी से गया था, तेजी से लौट आया 5-7 दिन में और कहा श्री कृष्ण तो रहे नहीं, चले गए हैं, उनका महाप्रयाण हो गया है। तब इन पांडवों को महसूस हुआ कि हमारे पास जो शक्ति थी वो ईश्वरीय शक्ति थी, वो हमारी शक्ति नहीं थी। तब इन्होंने निर्णय लिया, तब श्री कृष्ण चले गए, परीक्षित को राज देकर ये भी पहाड़ों पर चले गए। ये कहानी हमें दिखाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, मेरा इसका कोई स्थान नहीं है, सब कुछ ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है। बिल्कुल समा दें इस चीज को, मुझे तो बहुत अनुभव है, बहुत। मुझे क्लास करानी होती है, कॉलेज में भाषण करने होते हैं, और कहीं कुछ काम करने होते हैं, किचन का भी काम है। मैं देखता हूँ, मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मैं कर रहा हूँ, सोचते ही गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे सुंदर अनुभव हो गए तो सोचना भी बंद कर दिया मैंने। इतने अच्छे अनुभव हो गए कि मैं क्लास कराऊंगा ख्याल ही नहीं आता, और मैं क्या करता हूँ, बाबा का आह्वान किया, अब तुम्हारी शक्तियों से क्लास होगी, तुम कराओ। तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ता, अभी मैं आया आपकी क्लास कराने में कुछ नहीं सोचा, एक लाइन भी नहीं सोची थी कि मैं क्या शुरू करूंगा, कुछ नहीं। पर मैं ऐसे ही करता हूँ तो सुंदर होता है, और अगर मैं सोचूं मुझे करना है तो ना तो उतना अच्छा होगा, अपने को भी टेंशन रहेगी। किचन का काम भी है, बहुत लोग आते हैं आप जानते ही हैं, 20,000 ग्रुप है, कभी 30,000 ग्रुप है, ऐसा काम होता है कि हम देख रहे कि सब खुश रहते हैं। अभी हमारा किचन बना तो टूटा हुआ था, टेम्परेरी बना था, आपने देखा होगा पहले सीजन में, छोटा सा किचन, और 30,000 तक भी भाई बहने आए, और काम ऐसे हुआ हमारे वहाँ के सब भाई बात कर रहे थे कि हमने भी सोचा था बहुत थकान होगी, कुछ प्रबंध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही फ्री। तो ये ऐसी चीज है, मनुष्य मैंपन लाता है, मेरी जिम्मेदारी है तो भारी हो जाता है, और बाबा है वही कर रहा है तो काम खेल की तरह होता है। अभी हमारे एक ग्रुप में 8,000 थे, सेवाधारी थे नहीं, मैं गया नीचे किचन में, मैंने पूछा भाई आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा, ऊपर से दो दो चार चार भाई भेज दें, दो ज्ञान सरोवर से, दो मधुबन से, तो सहज हो जाएगा। तो मैंने भी देखा ऐसा लगता है 8,000 में कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि किचन ऐसा सुंदर बन गया था, एक ही बर्तन में 8,000 की दाल बन जाती है, एक ही बड़ी कढ़ाई उसमें 8,000 की सब्जी बन जाती है, एक एक में ही, और बड़ा सहज होता है, बहुत सहज होता है, एक बार डाल दी दाल फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, न वो जलेगी न कोई समस्या है। तो ईश्वरीय शक्तियों से सब काम सहज होता है। मुझे याद आया बाबा का एक महावाक्य, शुरू में मैं जब मुझे इन चीजों का ज्ञान नहीं था और किचन में मैं अकेला होता था, एक दो साथी होते थे बस, तो बाबा की एक बहुत अच्छी पॉइंट मेरे पास रही, बाप बच्चों को जिम्मेदारी देता है और जो बच्चे उस जिम्मेदारी को बाप को अर्पण करके काम करते हैं उनकी वो जिम्मेदारी बाबा खुद पूरी कर देता है। मुझे बहुत काम आई ये बात, छोटे समय जब मैं छोटा था तब की ये बात है, इसको मैं बहुत याद करता था क्योंकि मुझे अकेले को बहुत काम करना है तो टेंशन होती थी ना, अनुभव भी नहीं था, यज्ञ भी छोटा सा था, हमारा किचन भी छोटा सा था, लेकिन बहुत अच्छे अनुभव होते थे, जिम्मेदार बाबा है। मेरे को कैसे अनुभव होते थे, आजकल की बरसात चल रही है, मुझे याद है 74-73 में यहाँ अकाल पड़ गया, न किले कुरी से उग गई, 3 साल अकाल रहा। 75 में जब बरसात शुरू हुई तो बरसात में बाबा का सीजन रख दिया गया, ये हॉल बन चुका था 75 में, 74 में बन चुका था, तो हमारी जो लकड़ियाँ थी ना जिनसे भोजन बनता था वो ऐसे पड़ी रहती थी खुले में और बरसात उनपे होती रहती थी, सारा पानी लकड़ियाँ पी जाती थी और उसी से हमें भोजन बनाना है। यज्ञ में ऐसा न धन था न साधन थे कि कुछ कवर कर दिए जाए, 3 पत्रे या तिरपाल लकड़ियों के ऊपर डाल दी जाए, कम पानी लगे, लेकिन पूरी बरसात उनके ऊपर होती थी, उसको उठा के हमें अंदर लाना और उससे भोजन बनाना। लेकिन मैं बहुत हल्का रहता था कि सब कुछ बाबा का काम है। मैं हमेशा एक हंसी की बात अपने बाहर रखता हूँ, काम भगवान का और परेशान हम, क्यों भाई, जिसका काम है वो परेशान रहे, तो मैं बिल्कुल मस्त रहता था, ठीक है होगा ना आप ही, और वो लकड़ी वकड़ी फटाफट सूख जाती थी, कोई लोग आते थे जो हमारे पास भर जाते थे किचन में लकड़ियों को, और सब काम सहज हो जाता था। तो जिम्मेदार बाबा है, चिंता उसको करनी चाहिए, लेकिन अगर हम चिंता करेंगे तो वो चिंता नहीं करेगा, सीधी सी बात है, हम करें या वो करें, हमें निश्चिंत रहना तो चिंताएं सब उसे समर्पित कर दें, चाहे अपनी बीमारियों की बात हो, कामकाज की नहीं, बीमारियां भी उसको अर्पित करें, वो कहीं ना कहीं से हमारा इलाज कर देगा। मेरे पास इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं, मेरे शरीर में भी कई बीमारियां रही, पर यहाँ वालों को किसी को पता नहीं कि मैं भी कोई बीमार रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, हंसते बहलते ही सब पूरा हो गया, कमर दर्द भी बहुत रही, ऐसे ही ठीक होती गई, बाबा किसी को भेज देता था, यज्ञ में दवाई भी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर भी नहीं होता था हमारे यहाँ, सब काम ऐसे ही चलता था, किचन ही हॉस्पिटल होता था हमारा, ये घोट के पी लो, नींबू अजवाइन खा लो, नींबू का गर्म पानी बना के चाय बना के पी लो, ये चीज ठीक हो जाएगी, यही दवाइयां थी सब। तो बाबा पे विश्वास रखने से बहुत अच्छा होता है, और मैं तो सदैव अपने को भी याद दिलाता हूँ और सबको कहता हूँ, आज भी मुरली में था, बाप कहते हैं साधना करो और बच्चे साधनों में आ गए हैं, और अब साधन ज्यादा हो गए हैं, कौन से, एक तो मोबाइल सबके हाथ में खिलौना है, दूसरा टीवी, तीसरा इंटरनेट, मोबाइल भी ऐसे सुंदर सुंदर आ गए कि कोई तो सारा दिन लगे ही रहते हैं, युवक आप बड़े नहीं लगते, युवकों के लिए सबसे बड़ी माया है। बाबा ने हमारे लिए भी एक मैसेज भेजा था 2 साल पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में बच्चे बहुत व्यस्त हो गए हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो नहीं हुआ न तब था न अब हूँ, मोबाइल भी केवल फोन करने के लिए है और कोई यूज नहीं मैं करता। तो इन साधनों से क्या होता है, मैं इसलिए ये बात आपको सुनाई, जब यज्ञ में साधन नहीं थे, हमारे यज्ञ में साइकिल भी नहीं थी, चप्पल भी हमें हवाई चप्पल पहनने को मिलती थी बस, जुराब भी मुश्किल से मिल पाती थी, तब योग फर्स्ट क्लास होता था सबका, और जैसे जैसे साधन बढ़े तब उनसे योग है, इसलिए बाबा इन साधनों को फिर से ले लेगा, ये माया बनकर आए हैं, कुछ फायदा भी दे रहे हैं लेकिन माया ज्यादा। और जिस दिन ये साधन हट जाएंगे फिर सब योगी बनेंगे, विनाश होगा, समाप्ति होगी। जिस दिन पहला एटम बम छूट गया सारा इलेक्ट्रॉनिक फेल, सब फेल हो जाएगा। ये सब 25-25 हजार के मोबाइल डब्बे रह जाएंगे, बस खेलो इनसे, तोल के भाव बेचेंगे लोग के, ले लो 10 रुपए किलो। इसलिए इन साधनों को केवल यूज करना है, इनमें कहीं भी फंसना नहीं है। और आगे चलें, अब एक दो गुह्य बात आपके सामने रख देता हूँ। कर्म तुम्हारे को अर्पित, मन से संकल्प कर दो मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। माताएं भोजन बनाए तुम्हारे लिए, बिजनेस करें आप तुम्हारे लिए, और उसको अपने परिवार में जोड़ दो। बहुत अच्छा आप करें, मैं किसी भावना से नहीं कह रहा हूँ, बाबा को अपने परिवार में जोड़ो और उसका हिस्सा निकालो, ये भूलना नहीं आप, तो वो बहुत बड़ी प्राप्ति आपको कराएगा। उसका हिस्सा निकालना ही माना आपने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। उसके हिस्से को सेवाओं में लगाओ, पुण्य कर्मों में लगाओ, इसका जितना फायदा होगा उतना और किसी चीज का नहीं होगा। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही समय पर हमें काम आएगा। नहीं तो आपने कहानियां सुनी होंगी उत्तराखंड की, एक व्यक्ति परेशान और चिल्ला रहा था मुझे एक गिलास पानी पिला दो। कई बार उसने पुकारा मैं मर रहा हूँ, और आखिर में जब मरने वाला था बेचारे ने कह दिया मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं, ले जाओ मुझे पानी पिला दो, और मर गया। क्योंकि वहाँ था ही नहीं पानी, घासों से पानी बह रहा था, पानी का प्रश्न ही नहीं उठता था। नदियाँ बह रही थी लेकिन वो पी नहीं सकते थे। तो देखो 1 लाख में पानी नहीं मिला उसे। बहुतों ने बहुत बहुत पैसे देकर 1-1 हजार रुपए की बोतल ले ली, सुना आपने। तो क्या काम आता है मनुष्य को, पुण्य। एक अपना भाई मुझे अभी रायपुर में मिला, कहा मैं भी गया हुआ था केदारनाथ परिवार सहित, कहा हम नीचे आते गए पीछे विनाश होता गया, हम ऋषिकेश आ गए हम आ गए बस सत्य मैदान में आ गए, तब भयानक विनाश प्रारंभ हो गया। तो बाबा अपने बच्चों की बहुत मदद करेगा। बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि के बीच में बिल्ली के बच्चे जीवित रह गए थे, विनाश की अग्नि में बाबा अपने बच्चों को बहुत मदद करेगा, लेकिन किनको, जो समर्पित भाव से जी रहे हैं। कर दो सब तेरा, हम भी तेरे, हमारा परिवार भी तेरा, तुम्हें इन्हें संभालना, देखना आपके काम काज भी कितने इजीली प्रॉफिट देते हैं आपको, टेंशन रहेगी नहीं। अब इन सबसे सूक्ष्म बात, कर्म के परिणाम को अर्पित करना। अब आपने एक बहुत अच्छा काम किया, उसमें 10 लोगों ने आपकी वाहवाह की, महिमा की। अब ये महिमा आपके पास आई है, इसको हम रखते हैं कि वाह कितना अच्छा हमने काम किया, सब लोग मेरी महिमा कर रहे हैं, या इस महिमा को बाबा को अर्पित कर दें, जो आज भी मुरली में था, आन श्याम, इन सब का त्याग अर्थात बाबा को अर्पित। इसके विपरीत चीज भी, कोई काम आपने किया 10 लोग लानी कर रहे हैं, उसको भी अर्पित। मान महिमा भी तुम्हारी और 10 लोग ग्लानी कर रहे वो भी तुमको अर्पित, तो उसका इफेक्ट भी हमारी स्थिति पे नहीं होगा। नहीं तो कर्म का जो परिणाम है वो मनुष्य को ज्यादा प्रभावित करता है, कहीं सुख देता है कहीं दुख। लाभ हो गया तो बहुत खुशी हो जाएगी, हानि हो गई तो गम हो जाएगा, निराशा हो जाएगी। दोनों को अर्पित जीवन में ये याद रखना है कि सदा ही किसी मनुष्य की जीत नहीं होती, हार भी होती है। सदा ही किसी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती, असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। इन सब को स्वीकार कर लें और अर्पित कर दें। ऐसा समय आ रहा है किसी भी चीज में अगर हमारा ममत्व होगा क्या नुकसान होगा, बुद्धि उसमें फंस जाएगी। और बाबा जो हमें एक बात बहुत गुह्य कहते हैं, सुनने में मोटी लगती है, अंत में तुम्हें एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, क्योंकि अंत का समय ऐसा होगा कि अगर आत्मा कहीं भी अटकी हुई है मेरे मेरे में, तो आत्मा देह से मुक्त नहीं हो पाएगी और तब उसे बहुत कष्ट होगा। और जिनको बाबा की याद है सेकंड में पता भी चलेगा कब परम धाम चले गए। अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड की त्रासदी में पहाड़ गिर गया, बहुत लोग नीचे दब गए, बहुत जगह हुआ है ऐसा वहाँ, क्योंकि वहाँ के पहाड़ ऐसे नहीं होते जैसे आबू के हैं, कच्चे होते हैं थोड़े, इसमें कंकरी मिली हुई और कच्चे मिट्टी और राख जैसी होती है, वो एकदम से गिर जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक साथ मनुष्यों की मृत्यु भी नहीं होती। और ये सीन बहुत होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं 40 मंजिल 50 मंजिल, वो एक साथ जब गिरेंगी तो लोग दबेंगे, मरेंगे सब नहीं। अभी आप किसी व्यक्ति की कल्पना करो, आपने तो सुना है ना 9-9 दिन के बाद भी लोग निकले। अभी किसी एक व्यक्ति की कल्पना करो, मंजिल की बिल्डिंग गिर गई, हाथ कट गया, सिर कट गया, वो अंदर दबा हुआ है, दवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, श्वास मुश्किल से आ रहा है, उसको बच्चों की याद आ रही है, उसको याद आ रहा है मैंने इतना पैसा वहां रखा हुआ है, किसी को बताया तो है ही नहीं, अब वो तो गया, ये होगा ना सर। माता है तो याद आ रहा, अरे मेरी ज्वेलरी वहां रखी है, मैं तो अपनी बहू से भी छुपा के रखी थी, वो तो गई, अब याद आ रहा है, तो क्या होगा, अब आत्मा तड़प रही है अंदर, भगवान को पुकारेगी, बाबा उठा लो ना यहाँ से, फिर याद आ रहे हैं बच्चे, तो आत्मा उलझ कर रह जाएगी। और वो थोड़े से एक दिन आधा दिन थोड़ी घड़ियां आत्मा के लिए अति अति भयानक धर्मराज की सजाओं वाली है। उसे बाबा कहता है थोड़े समय में बहुत विकर्म विनाश हो जाएंगे। और जिसने सब कुछ किया हुआ तेरा अंदर भी कर दो, माताओं ने जो माल छुपाया हुआ है ना उसको देखो यहीं से, ये सर तेरा कर दो या ना दो कर तो दो, ठीक है सब तेरा, बुद्धि निकलेगी उससे। बहुत अच्छी विधि, बाबा साकार में थे तो कराया करते थे, देखो बाबा साकार में थे ना तो बड़ी पावरफुल चीजें कभी कभी कराया करते थे, और वो चीजें उनके लिए थी जिनको बाबा को बहुत महान बनाना है। कहते थे पति पत्नी मिलने आए हैं, बहन से पूछ रहे बाबा बच्ची कि तुम्हारा पति मर जाए तो रोगी, ये गुरु पूछ रहे तो उसके बाद पत्नी दोबारा नहीं जाएगी, बड़ा खराब आदमी है, मरने की बात कर रहा है। और बाबा से प्यार होता था कि हाँ बाबा बिल्कुल नहीं दोगी मैं तो, कल की बजाय आज मर जाए। तो बाबा क्या करते थे, तब ट्रेनिंग देते थे कि मन में एक चित्र बनाओ कि हमारे परिवार के सब लोग मर गए हैं, डेड बॉडी पड़ी है, बच्चे पति सब माँ बाप सब मरे पड़े हैं, क्या क्या स्थिति है मेरी, एक प्रैक्टिस। दूसरे कराया करते थे अपनी सब चीजें देखो, संकल्प करो ये मेरा नहीं है, घड़ी मेरी नहीं है, कार मेरी नहीं है, पैसा बैंक में ये मेरा नहीं है, ज्वेलरी ये मेरी नहीं है, सोने की ये हैं क्या कहते हैं चूड़ियां अच्छी अच्छी ये मेरी, माताओं से बोल नहीं रहा है, ये मेरी सोच लेना, खैर इतना जल्दी तो नहीं होता है। तो बाबा बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस कराया करते थे, मेरे को छोड़ने की प्रैक्टिस, छूटेगा तो सब कुछ, ये तो नहीं ना संसार 1000 साल और चलेगा, टाइम तेजी से समय पाता जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 साल और हैं बस संसार को इस तरह चलने के, शांति जो है थोड़ा कुछ, जैसे भी संसार चल रहा है, पाप की दुनिया, टेंशन की दुनिया, 5 साल और ऐसे थोड़ी चलेगी। 5 साल के बाद संसार का हर व्यक्ति पुकारेगा, हे प्रभु इस संसार को नष्ट कर दो, ये रहने लायक नहीं है। तब होगा विनाश शुरू, और विनाश एक दिन में नहीं, कम से कम 10 साल। धीरे धीरे वही धर्मराज की सजाएं भी होंगी, सबका सब कुछ नष्ट होगा। खाद लगेगी ना, कल बाबा कह रहे थे ना, ऐसी खाद मिलेगी डेड बॉडीज की कि धरती हरियाली से भरपूर हो जाएगी। कितनी सुंदर प्लानिंग है प्रभु, प्रभु की प्लानिंग देखो कितनी सुंदर है, कि पापियों को नष्ट भी करा देगा और उनके शरीरों से उनके आत्माओं के लिए खाद भी तैयार करा देगा, कि इनके शरीर भी तुम्हारे काम आएंगे। अब सोचो आप, गॉडली प्लानिंग कितनी सुंदर है संसार को स्वर्ग बनाने की। एटम बम भी नहीं छूटेगा यहाँ, क्योंकि एटम बम छूटते ही राख भी नहीं बचेगी ना, और धरती वैसी हो जाएगी जिसमें अन्न उपजेगा नहीं, इसलिए उससे भी सेफ रखेगा बाबा। तो सब कुछ छोड़ना है, और फिर 2027-28 से सब कुछ शांत हो जाएगा, राज श्री कृष्ण के फादर के हाथ में आ जाएगा, और वो सब कुछ ठीक करेगा। उसका गद्दी पर बैठना माना स्वर्ग की तैयारी, प्रकृति शांत, हीरे सोने चांदी मोती और सबसे भरपूर दुनिया, धरती महल बनेंगे, धरती हरियाली होगी, प्रकृति फिर से बैलेंस में आएगी 2036 तक। 100 साल पूरे हो गए श्री संगम के, यानी ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो गई, ब्रह्मा की आत्मा घर जाकर श्री कृष्ण बन के नीचे आ जाएगी। इस तरह ये खेल चलेगा, और हमारे पास पुरुषार्थ का थोड़ा सा समय है, इसे बहुत अच्छा योग सभी करें। जो भी तेरा मेरा किसी के पास है उससे मुक्त हमें होना है, नहीं तो समय हमें मुक्त करेगा, पर हम अपने पुरुषार्थ से होंगे। तो बाबा की जो पहली बात मैंने सुनाई वो होगी, राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। हम सबसे बुद्धि निकाल देंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी बाबा में, और बुद्धि बटी होगी तो स्थिर नहीं होगी बाबा में, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सभी बहुत अच्छी तरह अभी कर देंगे, तैयार है भाई, बहुत अच्छी तरह सब कुछ तेरा कर देंगे। ओम शांति।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे किसको संभाले, किसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।
यही झोपड़ी थी बाबा की, अब भी है, ये यहाँ तक बगीचा था, देखो ये पहाड़ी थी, यहाँ तक, यहाँ से बगीचा था। झोपड़ी अंगूरों से भरी हुई थी, जून का मास 68, बाबा अपनी झोपड़ी में थे। ये बाबा का अंतिम वर्ष था इस धरा पर, उसकी महान तपस्या का बिल्कुल अंतिम समय। तो वो सीन मुझे बहुत बार याद आता है, ऐसा लगता था यहाँ से शांति शांति फैल रही है चारों ओर। झोंपड़े के पास से गुजरने से डीप साइलेंस का अनुभव होता था। मैं छोटा था, बाबा से डर भी लगता था ना, भूले मिले तो नहीं थे, तो बाहर खड़े रहते थे उधर, वो शांति डीप साइलेंस फील होती रहती थी। तो बाबा ने बहुत जबरदस्त तपस्या की, खास करके मामा के जाने के बाद 3 साल महान तपस्या। बाबा बिल्कुल एकांत में रहने लगे थे, झोंपड़ी में अधिक टाइम, सबको सेवाओं पर भेज देते थे, दीदी रही थी उसको भेज देते थे बीच बीच में, तो बहुत डीप साधनाएं बाबा ने की थी। ठीक है, कुंती बहन धन्यवाद देने आई है, पर हम तो अर्पित कर चुके बाबा को धन्यवाद। अच्छा ठीक है, दे दो भाई।
धन्यवाद तो बाबा का ही है ना, है हम सबकी इतनी अनमोल जीवन बनाने वाला तो वही है। हंसु भाई मुरली में सुना ना कि जो कुछ भी दिया है किसने दिया है, बाबा ने, ईश्वर की देन ही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं है। जैसे पहला तो धन्यवाद उनको है ही है, लेकिन फिर भी तीसरे दिन को बाबा बनाता है, उनके आधार से हम अपने जीवन को बनाते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, प्रेरणा देने वाले को भी धन्यवाद कहना चाहिए ना, इसलिए धन्यवाद दे रहे। तो सूरज भाई ने आज मेरे को तेरे में इस क्लास से जरूर आपको प्रेरणा मिली होगी, और सुनते सुनते लास्ट गीत जब सुन रहे थे तो शायद सबने तेरे में परिवर्तन कर भी किया होगा, नहीं किया हो तो जाने से पहले भी सभी जरूर करके जाएंगे।